नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने मूसा की व्यवस्था में तलाक के विषय में देखा और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और 25 और 26 अध्याय में कुछ नई बातों को सीखेंगे। लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए आशीष मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें ताकि जब हम आपके वचन पर विचार विमर्श करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, वचनों को सुनते और पढ़ते हैं, ये वचन हमारे हृदय में कार्य करने पाए। और विशेष करके हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो चिंतित हैं, जो बीमारी और तंगी हालत में हैं। पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी अपनी अनुग्रह प्रदान करें ताकि वे भी स्वस्थ और भले चंगे होने पाएं, अपने तकलीफों से छुटकारा पाएं और आपके नाम की गवाही दे सकें। इस समय हम में से हर एक को अपनी आशीष प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज के अध्ययन में हम सबसे पहले देखेंगे 40 कोड़े, विधवाओं की सुरक्षा, दंड, अमालिकियों का न्याय। यह बहुत ही अनोखा अध्याय है जो गुनहगारों को अर्थात अपराधियों को सजा देने के जरिए निर्दोषों को बचाने और इसराइल के अंदर फिर से भाइयों के नाम को स्थापित करने की परमेश्वर की दिलचस्पी को हम देखते हैं। यह अध्याय इस आदेश के साथ में समाप्त भी होता है कि आसमान के नीचे से अमालेकियों के नाम को मिटा डालो। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं 40 कोड़े। मित्रों, बहुत से ऐसे अपराध थे जो लोगों में आपसी कठिनाइयों की वजह से खड़े हुए और हो सकता है कि आज की तारीख में या आज के दिन में भी हम अपनी नामावली में उनको अपराधी का दर्जा देंगे। ये ऐसे गंभीर पाप नहीं होते हैं जिनका दंड मृत्यु दंड हो सके, लेकिन फिर भी उन्हें दंड मिलना जरूरी है। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय उसके 1-3 पद में लिखा है, यदि मनुष्य के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करने के लिए न्यायियों के पास जाएं और वे उनका न्याय करें, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं, और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवा कर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा ना हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 40 कोड़े उनकी अंतिम सीमा होगी, नहीं तो उस व्यक्ति के मरने का खतरा बढ़ जाएगा। 1-40 कोड़ों की गिनती अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। दंड देने की यह रीति आज पुरानी हो चुकी है। मेरे लिए यह बहुत ही रुचिकर था जब बहुत से ऐसे अभिवक्ता इस बात पर चर्चा करते हैं या बातें करते हैं, तो वे लोग इस बात पर आकर सहमत हुए हैं कि यदि सार्वजनिक तौर पर कोड़े लगाए जाते हैं तो नियमों का उल्लंघन करने में जरूर कमी आएगी। कहने का मतलब यह है कि अपराध करने में कमी आएगी। इसका मतलब यह भी हुआ कि जब कोई व्यक्ति कोई छोटी सी अपराध करता है तो उसे एक आरामदायक कमरे में रखने के बजाय उसे बाहर ले जाकर कोड़े लगाए जाए। यह स्पष्ट है कि परमेश्वर ने भी यही सोचा था कि इस मसले को इसी तरह से संभालना चाहिए और इस बात का जवाब कि यह तरीका कामयाब है या नहीं। इस बात से साबित होता है कि इसराइल के अंदर सबसे कम अपराध दर पाई जाती है। मेरे मित्रों, अब हम आगे देखते हैं कि बैल का मुंह को नहीं बांधें। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, दांवते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। मेरे मित्रों, यहाँ पर बहुत प्यारी चीज सामने आती है कि परमेश्वर एक बैल को बचा रहे हैं, और इससे इस बात का पता चलता है कि परमेश्वर पशुओं के लिए भी चिंता करते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा न करो, अर्थात बैल का मुंह न बांधो। वह बैल आपके लिए काम कर रहा है, वह आपके अनाज को पीस रहा है, उसे खाना खाने दे। परमेश्वर का विचार यहाँ पर बहुत ही सुंदर है। यह बहुत ही रुचिदायक बात है कि पौलुस व्यवस्था विवरण की पुस्तक तक पहुंचकर कुरुंथियों के मसीहियों के लिए अपनी पत्री में एक पद का इस्तेमाल करता है। लिखता है, पहला कुरुंथियों की पत्री 9 अध्याय 9 से 11 पद में, क्या व्यवस्था यह नहीं कहती, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दांवते समय चलते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। मेरे मित्रों, क्या आप देख पाते हैं कि पौलुस किस प्रकार से इस नियम को लागू कर रहा है? वह कहता है कि अपने प्रचारक को दें। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 14 पद में इसे पाते हैं, जो व्यक्ति आपकी आत्मिक बातों के द्वारा सेवा करते हैं वे आपको आत्मिक भोजन खिलाते हैं, उसके बदले में आपको उसके लिए आर्थिक बातों का इंतजाम या प्रबंध करना चाहिए। इस तरीके से पौलुस इस पद का प्रयोग करता है। मेरे मित्रों, जब मैं बैठकर माइक पर रेडियो का प्रसारण के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर शब्दों का लहर दौड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि जैसे बैल अनाज को दांव रहा होता है, ठीक उसी प्रकार से ये वचन भी चारों तरफ दौड़ रहे हैं, और यही दावने का काम आज मैं कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा है कि दावते हुए बैल के मुंह को ना बांधें। मैं चाहूंगा कि आप इस नियम का पालन अपने जीवन में अपने तरीके से करें। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विधवाओं की सुरक्षा का नियम। अब हम एक ऐसे बिंदु की ओर आते हैं, और आप मुझे यह विश्वास नहीं दिला सकते हैं कि परमेश्वर के पास मजाक करने की इच्छा नहीं है। परमेश्वर के पास विधवाओं की सुरक्षा करने के लिए यहाँ नियम है। यह प्रभावशाली ढंग से काम भी किया है, और जिसे हम आगे रूत की पुस्तक में अच्छी तरीके से देखेंगे, परंतु मेरे लिए यह बहुत ही मजाकिया है। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय उसके 5 और 6 पद को पढ़ें। लिखा है, जब कई भाई संग रहते हों और उनमें से एक निपुत्र मर जाए, तो उसकी स्त्री का ब्याह पर गोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले, और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे। और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो, वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इसराइल में से मिट न जाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर स्त्रियों को बचा रहे हैं। हम महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहुत कुछ सुनते हैं, और यह बिल्कुल ही रुचिदायक है कि परमेश्वर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। हमें यह याद रखना है कि इसराइल में ज्यादातर लोग किसान हुआ करते थे, और सारी भूमि को लोगों में बांट दिया जाता था, और सबके पास अपना अपना जमीन का टुकड़ा हुआ करता था। जब वह किसान मर जाता था, तो वह अपने पीछे भूमि, अनाज और बैल और भेड़ों को छोड़ जाता था। तब वह विधवा उस खेत की देखभाल करने के लिए अकेले रह जाती थी। कल्पना करके देखिए कि यदि कोई पुरुष बाहर से आकर एक परदेशी या फिर किसी अन्य गोत्र का व्यक्ति आकर उस स्त्री से विवाह कर लेता है, तो उस सारी जायदाद का हकदार वह बन जाता है। इसलिए ऐसा करने की मनाही थी। वह स्त्री किसी बाहरी व्यक्ति से विवाह करने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। यह वह तरीका है जिसके द्वारा वह स्त्री विवाह प्रस्ताव रखती है। उसे अपने पति के किसी भाई या रिश्तेदार के पास जाकर उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखना था। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय और उसके 7 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यदि उस स्त्री के पति के भाई को उसे ब्याहना ना भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे कि मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इसराइल में बनाए रखने से नकार दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। मित्रों ध्यान दीजिए, अगर वह भाई या रिश्तेदार उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता है तो वह स्त्री उसे न्यायालय में ले जा सकती है। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 25 उसके 8 से 10 पद में लिखा हुआ है, तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाएं और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे कि मुझे इसको ब्याहना नहीं भावता तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, तब इसराइल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। मेरे मित्रों, यदि वह व्यक्ति विवाह करने से इनकार कर देता है तो उस स्त्री को यह अधिकार था कि वह उसे न्यायालय में ले जा सकती है। शहर का मुख्य द्वार वह स्थान था जहां पर न्याय किया जाता था। वह पुरनियों को अपनी दशा के बारे में बताती है, जो बुजुर्ग हैं उनको सब बातें बताती है। यदि वह व्यक्ति उस स्त्री से विवाह करने से इनकार करता है या मना कर देता है तो उसे उसका हर्जाना भी भरना पड़ता है। उस पुरुष ने व्यवस्था के अनुसार जो काम करना चाहिए था उसे तुच्छ जाना, जो इस बात को साबित करता है कि वह अपने भाई के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गोत्र के प्रति, देश के प्रति और अपने परमेश्वर के प्रति निष्ठावान नहीं है, वह व्यक्ति कलंकित है। मेरे मित्रों, एक अद्भुत उदाहरण है कि किस प्रकार परमेश्वर विधवाओं की सुरक्षा करता है। हम इस नियम का इस्तेमाल या प्रयोग होते हुए देखेंगे जब हम रूत की पुस्तक पर पहुंचेंगे। यह बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उस पुस्तक में कारगर रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसराइल में इसका परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ता है? कल्पना करके देखें कि इफ्राइम के देश में एक परिवार के 4 पुत्रों के साथ एक परिवार रहता है। आप यह भी सोच कर देखिए कि एक के बाद एक रात में उन पुत्रों में से एक लालटेन के साथ बाहर जाता है और फिर वापस आकर सोने के लिए जब जाता है तो वह सीटी बजाता है। बहुत जल्दी ही परिवार को इस बात से कुछ परेशानी होने लगती है और उनमें से एक भाई पूछता है, तुम हर शाम को कहाँ जाते हो? वे अपने आप खोजबीन करेंगे और उन्हें पता चलता है कि परिवार में एक लड़की थी जो सड़क पर रहती है। अतः वह भाई इस बात को कहेगा कि मैं पड़ोसियों के साथ भाईचारा रखने में विश्वास रखता हूँ और मैं लगातार उस परिवार के पास जाता रहा हूँ जो अभी भी आकर बसे हैं। और फिर वह कहेगा कि मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। अब अगर वे भाई उस लड़की की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। वे कहेंगे कि सुन, इससे पहले कि तू कोई कदम उठाए और इससे पहले कि जाकर किसी डॉक्टर से उसका चेकअप करवाए, हम यह आश्वस्त होना चाहते हैं कि तेरा स्वास्थ्य ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि अगर तुझे कुछ हो जाता है तो हम में से कोई भी उस लड़की के साथ में नहीं रहना चाहता। मेरे मित्रों, विश्वास कीजिए कि वह व्यवसाय में होकर बात कर रहे हैं। शादी करना एक पारिवारिक मामला है। यह परमेश्वर का परिवार है जो परमेश्वर का परिवार को नजदीक लाने का अनोखा तरीका है, जिससे विधवा और भूमि दोनों ही सुरक्षा को प्राप्त करें। देखिए, यह एक ऐसा तरीका था जिसके द्वारा वह भूमि सदैव एक ही परिवार की बनी रहती थी। यह उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नियम था। अगले पद में हम एक गंभीर दंड के बारे में पाते हैं, जब पुरुषों में आपस में संघर्ष हो रहा होता है। इसके अलावा परमेश्वर ने लोगों से यह भी कहा है कि वह अपनी नाप और वजन को भी नियंत्रित करके रखें। उन्हें अपने व्यवसायिक कार्यवाही में भी ईमानदार होना है। आइए हम आगे देखते हैं अमालेकियों का न्याय। मेरे मित्रों, निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब इसराइली मिस्र से निकलकर बाहर आ रहे थे तो अमालेकियों ने मार्ग में उनको रोकने के लिए उनका सामना किया। अमालेकी मरुस्थल में रहने वाले खानाबदोशी अर्थात डाकू लोग थे। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय उसके 17 से 19 पद में लिखा हुआ है, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझ से मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को न भूलना। मेरे मित्रों, इसराइल ने अमालेकियों और रपिदीम की ओर से एक अकस्मात आक्रमण का सामना किया। यह वह युद्ध था जिसमें मूसा पर्वत की चोटी पर हाथों को उठाए हुए प्रार्थना कर रहा था और हारून और हूर उसके हाथों को दोनों आलंगों से पकड़े हुए थे। जब मूसा के हाथ प्रार्थना के लिए उठे थे तब तक तो यहोशू जीत रहा था, परंतु जब मूसा अपने हाथों को नीचे करता था तो वह हार जाते थे। वे अंत में अमालेकियों पर विजयी हुए। उस समय पर परमेश्वर ने बहुत ही मजेदार बात को कहा, मैं अमालेकियों के नामों निशान को इस स्वर्ग के नीचे से मिटा डालूंगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि अमालेक शरीर को दर्शाता है, वह वो गिरा हुआ स्वभाव है जो हमें विरास में आदम से प्राप्त हुआ है। परमेश्वर की तरफ से इस स्वभाव से दूर रहने के लिए हमें जोर डाला गया है, क्योंकि इस स्वभाव के साथ में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। आपके और मेरे पास एक ऐसा पुराना स्वभाव है जो कभी भी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं हो सकता। हम इस विषय पर विस्तार पूर्वक तब चर्चा करेंगे जब हम रोमियो की पुस्तक में पहुंचेंगे। मित्रों, अमालेक शरीर का ही एक प्रारूप है। जब तक हम इस जीवन में रहते हैं हम कभी भी अपने शरीर से छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ता रहेगा। इसे हम निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसके 16 पद में पाते हैं, और हमने अध्याय 13 में पढ़ा है कि शरीर तुच्छ जाने जाने के लिए नहीं है। हम योगी बनकर या इसे यातना देने के द्वारा या अति धार्मिक व्यक्ति बनने के द्वारा शरीर पर नियंत्रण करने के द्वारा हम शरीर पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह शरीर नहीं बल्कि मस्तिष्क से सब नियंत्रण होता है। इसके द्वारा कुछ भी स्थापित नहीं होगा, परंतु हमें यह भी पहचानने की जरूरत है कि हम में से प्रत्येक के भीतर एक युद्ध चल रहा है। यह आत्मा और शरीर के बीच में युद्ध है। गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह तुम न कर सको। मेरे मित्रों, हम लड़ाई लड़ने के द्वारा अपने शरीर पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा हम उस पर विजय पा सकते हैं कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर दें। केवल परमेश्वर का आत्मा ही हमारे मनों में आत्मा के फलों को उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर कहता है कि वह इस संसार से अमालेकियों के नामों निशान को हटा देगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसने किसी दिन इस शरीर को त्यागने के लिए ठाना है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 25 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 26 से जारी रखेंगे, और यहाँ पर हम पाते हैं विषय पहला फल धन्यवाद देना। मित्रों, यह अध्याय हमारे सामने एक सुंदर रीति से प्रस्तुत करता है जो पहले फल की भेंट के साथ में संबंधित है। यह याद करते हुए कि परमेश्वर के द्वारा ही भूमि की उपज प्राप्त होती है, और उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद के भाव के साथ इसराइली अपने साथ में पके हुए फलों को अर्पण करने के लिए परमेश्वर के पास लाते थे। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 26 अध्याय उसके 1-4 पद में पढ़ें। लिखा हुआ है, फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना कि मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूँ। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने धर दे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइल लोग अपना पहला फल परमेश्वर के भवन में लाते थे ताकि वे इस बात को स्मरण कर सकें कि परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से निकालकर उस वायदे के देश में उन्हें लाया है। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 26 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना कि मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेशी होकर रहा, और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। मित्रों, यहां पर कुछ ऐसी बात है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। वह पहले पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास में आता है। इसराइली पश्चाताप करते हैं, एक सीरियन जो नाश होने वाला था वह मेरा पिता था। क्या इब्राहिम इसराइली था? जी नहीं, वह वास्तव में नहीं था। इसहाक के बारे में आपका क्या ख्याल है? वह भी इसराइली नहीं था। याकूब के बारे में आप क्या कहेंगे? तकनीकी रूप में अगर कहें तो वह भी इसराइली नहीं था। जो भीड़ मिस्र की ओर गई वह सीरिया की ओर गई। अब्राहम उतना ही इसराइली था जितना कि वह एक इश्माइली था। मेरे मित्रों, जैसा कि दोनों ही जातियां उससे ही पैदा हुई थी, नागरिकता के लिहाज से अब्राहम एक सीरियन था। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 26 अध्याय उसके 6-10 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख श्रम और अंधेर पर दृष्टि की, और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र देश से निकाल लाया और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हमें दे दिया है। अब हे यहोवा, देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूँ। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना। मेरे मित्रों, इसराइलियों के लिए यह समय सच्चे धन्यवाद देने का समय था। हमारे लिए धन्यवाद करना एक ऐसा ही दिन है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं तब, और यह अच्छा है और बहुत जरूरी है। बहुत से लोग यह अंगीकार करते हैं कि वे उच्च श्रेणी में हैं, और हम बहुत बड़ा भोज भी करते हैं। ज्यादातर मित्र हमें बाहर खाने पर बुलाते हैं, और यह पिछला धन्यवाद महिमामित समय था। मेरे मित्रों, यदि हम अपने जीवन में ऐसा धन्यवाद देंगे तो निश्चय ही परमेश्वर हमें भी आशीष देगा। लेकिन हम में से कितने लोगों ने सच में धन्यवाद के दिन को प्रभु के लिए अर्पण किया? इसराइलियों ने किया। यह धन्यवाद देने का दिन है, और यह धन्यवाद देने का शुरुआत भी परमेश्वर की ओर से इसराइलियों ने ही किया। यही हम पीछे जाकर तीर्थ यात्रियों और प्यूरिटन्स को देखें तो हम पाएंगे कि वह श्राद्ध कम होने के बावजूद भी वह उस दिन परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। अपने होठों से परमेश्वर की स्तुति की भेंटे चढ़ाना बहुत ही अद्भुत है और अपने पैसों को परमेश्वर के पास लाना भी अद्भुत है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन में स्तुति और पैसा दोनों साथ साथ ही चलते हैं। इस अध्याय का दूसरा भाग परमेश्वर की आज्ञा को मानने की घोषणा करता है। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 26 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा हुआ है, तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेविए, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हों। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना कि मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेविए, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने न तो टाला है और न भूला है। मेरे मित्रों, अगर इसराइल उसकी आज्ञाओं को माने तो उसका वायदा है कि वह उन्हें अनोखे लोग बनाएगा और संसार के सारे राष्ट्र में सबसे उच्च स्थान पर वे लोग होंगे। आज यदि आप उच्च स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उसके भवन में अपने दानों को लेकर के आएं, उसके भक्तों को जो लेविए हैं, जो पास्टर्स हैं, उनके लिए अपने धन को अर्पण करें और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अवश्य ही अपने व्यवहारिक रूप में लाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मसी महिमा, मसी महिमा हो, तेरी महिमा हो, मसी महिमा। ओ घर में तेरी महिमा, ओ बाहर तेरी महिमा, ओ घर में महिमा, महिमा ही महिमा, मसी महिमा।